नमस्कार भारत, रविवार 13 सितंबर, मैं हूं निखिल रंजन। मध्य पूर्व के प्रवासियों से बेचैन हुआ यूरोप, कहीं उनके लिए तो कहीं विरोध में हुई रैलियां। झाबुआ में गैस सिलेंडर फटने से 85 लोगों की मौत, आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा?
गैस सिलेंडर ब्लास्टिंग की जो जिलेटिन जो राड रहती है उसमें मतलब विस्फोट हुआ, जिसके कारण दूसरी जो गैस टंकियां थी मतलब उसका भी विस्फोट हुआ।
बिहार में चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर एनडीए में खींचतान, जीतन राम की पार्टी ने उठाया सम्मान का सवाल।
और सम्मानजनक सीट ये होती है कि भाई सब बराबर ट्रीटमेंट हो, और लोक जनशक्ति पार्टी से एक भी सीट कम पे हम लोग को मंजूर नहीं है।
यूएस ओपन के महिला वर्ग में फ्लाविया पेनिटा बनी नई चैंपियन। अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। प्रवासियों के साथ बर्ताव को लेकर यूरोपीय देशों में बढ़ रहे तनाव के बीच हंगरी ने ऑस्ट्रिया के राजदूत को तलब किया है। हंगरी के विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रियाई चांसलर वर्नर फेमैन की टिप्पणी की आलोचना की है, जिन्होंने हंगरी के प्रवासियों के साथ बर्ताव की नाजी जर्मनी के यहूदियों के साथ बर्ताव से तुलना की थी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान की नीतियों के खिलाफ एक प्रदर्शन भी हुआ। शनिवार को यूरोप के कई देशों में प्रवासियों के समर्थन और विरोध में रैलियां हुई हैं। अधिकतर रैलियां प्रवासियों के समर्थन में रहीं। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलाबाद कस्बे में गैस सिलेंडर फटने से कम 85 लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। झाबुआ के प्रभारी मंत्री अंतर सिंह आर्य ने बीबीसी से कहा है कि घटना की जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। ट्यूनीशिया में हजारों लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोपियों को राहत देने वाले नए कानून के खिलाफ राजधानी ट्यूनिस में प्रदर्शन किया है। सरकार को उम्मीद है कि प्रस्तावित कानून से व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों पर लंबे समय से चल रहे आर्थिक मामलों का निपटारा होगा। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह भ्रष्टाचार के दाग धोने की कवायद है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, कुछ व्यापारियों ने जनता का पैसा चुरा लिया, वो पैसा जो विकास के लिए था। ये पैसा ट्यूनीशिया के आम लोगों के भले के लिए था, ना कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के लिए। ये थे एक प्रदर्शनकारी के शब्द। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया और पड़ोसी देशों में विस्थापितों की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अधिक पैसा देने की अपील की है। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वयक याकूब अलहेलो का कहना है कि यदि युद्ध जारी रहा तो इस साल 10 लाख और लोगों को देश छोड़ना पड़ सकता है। जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर का कहना है कि पूर्वी यूक्रेन में संकट के मुद्दे पर रूस, फ्रांस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के साथ वार्ता में अहम प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि सभी पक्ष 2 सप्ताह से जारी संघर्ष विराम को और मजबूत करने पर राजी हुए हैं। अनुभवी वामपंथी नेता और ब्रिटानी सांसद जेरेमी कॉर्बिन को भारी बहुमत से ब्रिटेन की लेबर पार्टी का नया नेता चुना गया है। बीबीसी संवाददाता के मुताबिक लेबर पार्टी ने अपने सबसे विद्रोही और अनुभवहीन नेता को पार्टी की कमान सौंपी है। शुक्रवार को मक्का की मस्जिद में हुए क्रेन हादसे में 100 से अधिक लोगों की मौत के बाद सऊदी अरब के शाह सलमान ने मस्जिद का दौरा किया है। शाह सलमान ने हादसे की जांच का भरोसा दिया। मस्जिद को शनिवार को फिर से तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया गया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश कैमरून में अग्निशमन दल देश की सबसे बड़ी जेल में लगी भीषण आग से निपटने की कोशिश में लगे हैं, और इटली की फ्लाविया पेनेटा ने हमवतन रॉबर्टा विंची को हराकर इस साल का यूएस ओपन महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं bbchindi.com के साथ मोबाइल पर भी, आज निखिल रंजन के साथ। शुरुआत करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। यूरोप के कई शहरों में प्रवासियों के समर्थन में निकाली गई रैलियों में दसियों हजार लोगों ने हिस्सा लिया है। ये लोग सरकारों से प्रवासियों के लिए और अधिक कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। ये प्रवासी मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों से यूरोप का रुख कर रहे हैं। हालांकि कुछ देशों में इनके विरोध में भी प्रदर्शन हुए हैं। पूरा ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
कुछ
कल यूरोप के कई शहरों में प्रवासियों के समर्थन में रैलियां निकाली गईं, जिनमें दसियों हजार लोगों ने हिस्सा लिया है। लोग सरकारों से प्रवासियों के लिए अधिक कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। जर्मनी के शहर म्यूनिख में शनिवार को करीब 9,000 शरणार्थी पहुंचे। जर्मनी में सप्ताहांत में 40,000 शरणार्थी पहुंच सकते हैं। चांसलर अंगेला मर्केल ने बड़ी तादाद में शरणार्थियों को स्वीकार करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि उन्हें लगता है कि यही सही है। हालांकि उन्हें सहयोगी राजनीतिक दलों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। बवेरिया प्रांत के प्रीमियर ने कहा है कि जर्मनी में हालात बेकाबू हो सकते हैं। वहीं लंदन में भी दसियों हजार लोगों ने प्रधानमंत्री निवास तक शरणार्थियों के समर्थन में रैली निकाली है। कई अन्य ब्रिटानी शहरों में भी बड़ी रैलियां हुई हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1,000 लोगों ने रैली निकाली। वहीं डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में 30,000 से ज्यादा लोग प्रवासियों के समर्थन में संसद के बाहर इकट्ठा हुए हैं। हालांकि कई पूर्वी यूरोपीय देशों में प्रवासियों के विरोध में रैलियां निकाली गईं। पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में इस्लाम विरोधी नारे लगाए गए। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा और चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में भी प्रवासियों के विरोध में रैली निकली। इसी बीच हंगरी का कहना है कि वह सीमा पार कर आने वाले प्रवासियों को गिरफ्तार करेगा। प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान ने कहा, ठोस रूप से कहा जाए तो जो लोग अवैध रूप से सीमा पार करने का अपराध करने के बाद आएंगे, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हम ना ही उन्हें रास्ते में सुरक्षा देंगे और ना ही किसी ऐसे स्थान पर आने के लिए कहेंगे जहां उनकी सहायता की जा सके। अगर वे अवैध रूप से सीमा पार करेंगे तो प्रशासन उन्हें गिरफ्तार कर लेगा। हम उन्हें बीते सप्ताह से चेतावनियां दे रहे हैं। जर्मनी के आर्थिक और ऊर्जा मामलों के मंत्री सिगमार गैब्रियल ने ओर्बान की आलोचना करते हुए कहा, ओर्बान को यूरोपीय कानून का पालन करना चाहिए। उनका देश शरणार्थियों के मामले में जिनेवा सम्मेलन से बंधा है और उन्हें शरणार्थियों की रक्षा करनी होगी। उनके पास भी हमारी तरह ही ये तय करने का अधिकार है कि कौन शरण पाने लायक है और कौन नहीं, लेकिन वो यूं ही लोगों को इतने खराब हालात में रहने के लिए नहीं छोड़ सकते और वापस भी नहीं भेज सकते हैं। अफ्रीका और मध्य पूर्व से बड़ी तादाद में आ रहे शरणार्थियों के कारण पैदा हुए संकट पर पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के देशों में राय बटी नजर आती है। पश्चिमी देश जहां उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, वहीं पूर्वी यूरोपीय देश उनका विरोध कर रहे हैं।
यूरोप के कई शहरों में प्रवासियों के समर्थन और विपक्ष में निकाली गई रैलियां, रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। और अब रुख करते हैं भारत का। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पेटलावद कस्बे में गैस सिलेंडर फटने से कम 85 लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। ये खबर आपको कल शाम को ही आ गई थी और हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने झाबुआ के प्रभारी मंत्री अंतर सिंह आर्य से इस हादसे के कारणों के बारे में पूछा।
85 लोगों की मौत हो चुकी है और 53 लोग जो घायल है विभिन्न अस्पतालों के अंदर इलाज चल रहा है उनका।
और ये कहा जा रहा है कि ये घटना जो है गैस सिलेंडर के फटने से ही हुई है, क्या ये सही बात है?
गैस सिलेंडर वो जो अपने जो ब्लास्टिंग की जो जिलेटिंग जो राड रहती है उसमें मतलब विस्फोट हुआ, जिसके कारण मतलब वो दूसरी जो गैस टंकियां थी मतलब उसका भी विस्फोट हुआ। उसका मतलब विस्फोट होने से पहले तो एक विस्फोट हुआ जिसमें कि कुछ लोग आसपास में मतलब जमा हो गए और फिर बाद में गैस सिलेंडर जो फटा मतलब उससे भी मतलब ये ज्यादा हादसा हुआ है।
तो ये तो एक कस्बा था, रिहायशी इलाका था, यहाँ जिलेटिन रॉड्स का रखा जाना इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है वहाँ पर,
क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जो जांच में जिस किसी भी प्रकार की अनियमितता अगर होगी उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। और यहाँ पर जो वहाँ के जो TI है उसको भी SP ने अभी तत्काल सस्पेंड कर दिया।
अच्छा, और इस मामले में सिर्फ एक अधिकारी को ही निलंबित किया गया है?
वो जो भी होगा कल और कार्रवाई हो सकती है।
यहाँ ये जानना चाहेंगे कि ये जिलेटिन रॉड्स जो रखे गए थे ये तो माइनिंग के काम आते हैं।
जी जी जी।
तो प्रारंभिक तौर पर कुछ पता चल पा रहा है कि
जांच के अंदर जो आएगा जो भी गैर कानूनी अगर कोई होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे।
यहाँ ये जानना चाहेंगे कि ये जिलेटिन रॉड्स कहाँ कैसे पहुँचे होंगे वहाँ पर और इनमें कैसे विस्फोट हुआ, ये क्या पता चल पाया है?
जिलेटिंग रॉड में मतलब कहीं विस्फोट हुआ है, जिसके कारण आसपास में जो सिलेंडर भी जो रखे थे मतलब वो भी फटे, मतलब पास में मतलब जो एक रेस्टोरेंट था मतलब उसके कारण भी मतलब है ना ये हादसा हो गया मतलब।
और क्या लोगों को इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर जिलेटिन रॉड्स रखे हुए हैं जो इतने घातक साबित हो सकते हैं उनकी जिंदगी के लिए, क्या इस तरह की कभी शिकायत की गई थी?
नहीं नहीं, इस प्रकार की अभी तक तो मेरे सामने तो कोई शिकायत नहीं आई।
तो लोगों को
ये होगा, ये जांच में सब विषय आ जाएगा मतलब।
तो आपका ये कहना है कि लोगों को भी ये नहीं पता था कि यहाँ पर ये जिलेटिन रॉड्स रखे हुए हैं?
मेरे को ये है कि मेरे पास मतलब राइटिंग में कोई भी ऐसी शिकायत अभी तक नहीं मिली थी।
और कितना नुकसान हुआ है, इसका क्या अंदाजा बता पाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है?
नुकसान तो यही है, 85 लोगों की तो अधिकृत पुष्टि हो गई है, वो 2-4 लोग मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं। और सवेरे माननीय मुख्यमंत्री जी 11:40 को मतलब पेटलावत पहुंच रहे हैं। जितने जो मृत लोग हैं उनको 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है, और जो गंभीर रूप से घायल है उनको 50,000 रुपए देने की माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है।
मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुए हादसे के कारणों के बारे में जानकारी दे रहे थे प्रभारी मंत्री अंतर सिंह आर्य, और उनसे बात कर रही थी हमारी सहयोगी सुशीला सिंह। कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण आपको ये इंटरव्यू थोड़ी देर से सुनाई दिया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और अब बात बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है। पार्टी के प्रवक्ता शारिम अली ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि उन्हें एलजेपी से कम सीटें नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है, अगर सीट बंटवारे में अपमान हो जाए तो बात नहीं बनेगी। हमारे सहयोगी पंकज प्रियदर्शी ने शारिम अली से बात की।
ये बताइए कि ऐसी खबरें आ रही है कि आपकी पार्टी एनडीए में जो सीटों के बंटवारे से संतुष्ट नहीं है, जितनी सीटें आपको दी जा रही थी, इसमें कितनी सच्चाई है?
बिल्कुल सच्चाई है, और ये कोई ये ओपन सीक्रेट है, ऐसा कुछ भी बात है नहीं, है ना। और हम लोगों ने कभी भी नंबर ऑफ सीट से बात नहीं की है, हम लोगों ने एक सम्मानजनक सीट की बात की थी। और सम्मानजनक सीट ये होती है कि भाई सब बराबर ट्रीटमेंट हो, और लोक जनशक्ति पार्टी से एक भी सीट कम पे हम लोग को मंजूर नहीं है, और ये हम लोग का बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट है।
आपकी पार्टी के नेता जीतन राम जी की लंबी बातचीत हुई थी अमित शाह से, उस पर क्या निकला, उसमें कुछ जानकारी दे सकते हैं आप?
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही नक्शल में जो मैंने आपको बताया यही आउटकम है उस मीटिंग का, और हम लोग अपने भावना से अवगत करा दिया हम लोगों को, और मुझे लगता है कि उचित फैसला लेंगे।
अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो आपकी पार्टी का अगला कदम क्या होगा?
बिल्कुल स्पष्ट है, कोई छिपा हुआ मामला नहीं है। अब अगला कदम होगा कि हम लोग स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, ये बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है, और इसमें सीट शेयरिंग में भी अपमान हो जाए तो फिर हम लोग स्वाभिमान की लड़ाई कहाँ लड़ पाएंगे।
लेकिन ये बताइए कि आपकी पार्टी का रामविलास पासवान जी की पार्टी से क्या इतना टकराव की स्थिति है, क्योंकि आपके नेता ने भी उनके बारे में कुछ कहा, फिर पासवान जी ने भी जीतन राम जी के बारे में कुछ कहा, ऐसी टकराव की स्थिति क्यों
है? नहीं नहीं, बिल्कुल उस टकराव में आप नहीं ले जाए, कहीं कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है और व्यक्तिगत टकराव भी नहीं है। आप बिल्कुल वहाँ के परिवेश को देखिएगा तो हम लोग वहाँ पे 12-14% हम लोगों के पास वहाँ पे वोटर्स हैं, और इनके पास 4-6% है, तो बहुत लंबा डिफरेंस है उसमें, और निश्चित तौर पर हम लोग को ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि बिहार की बड़ी लड़ाई है, इसलिए हम लोग इसको कम्प्रोमाइज करें, लेकिन आप बिल्कुल सम्मान के साथ समझौता तो नहीं किया जाता है।
शारिम अली जी, ये बताइए कि ये दलितों के वोट की लड़ाई तो नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं है दलितों की वोट की लड़ाई, क्योंकि आदरणीय मांझी जी गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार में, चाहे वो स्वर्ण गरीब हो, अल्पसंख्यक गरीब हो, दलित गरीब हो, पिछड़ा गरीब हो, सारे गरीबों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं वहाँ पर, वो दलितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए इसको आप दलित के पैरामीटर में सीमित करके देखना गलत होगा।
लालू प्रसाद यादव की पार्टी की ओर क्या आपके विकल्प खुले हुए हैं या गठबंधन की ओर?
मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट किया, जहाँ पे नीतीश कुमार होंगे वहाँ पे हम लोग के जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता शारिम अली बता रहे थे कि क्या नाराजगी है उनकी एनडीए से। उधर बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने, बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने ऐसी किसी बात का खंडन किया है।
अरे सर, ये खबरें आ रही है कि मांझी जो है नाराज है टिकट बंटवारे को लेकर।
गलत खबर है मैडम,
सीटों के बंटवारे को लेकर मांझी कोई नाराज
नहीं है, कहीं नाराज नहीं है, बातचीत चल रही है।
एलजेपी को जितनी सीटें दी गई हैं उतनी सीटें उन्हें भी मिलनी चाहिए,
मैं खंडन करता हूँ।
बिहार प्रभारी बीजेपी के भूपेंद्र यादव कह रहे थे कि कोई डिफरेंस नहीं है पार्टियों में सीटों के बंटवारे को लेकर। बिहार के चुनाव में एक और नया खिलाड़ी मैदान में आ रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में सीमांचल इलाके से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ये बताने से मना कर दिया कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे सहयोगी जुबैर अहमद ने असदुद्दीन ओवैसी से बात की और पूछा कि जब आपने महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा था तो आपको 2 सीटें मिली थी और आपने गैर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे, तो क्या आप बिहार में भी ऐसा ही करेंगे?
जरूर जरूर, दलित रहेंगे इंशाल्लाह, दलित भी उम्मीदवार रहेगा हमारी पार्टी से इंशाल्लाह।
और ये कांग्रेस पार्टी ने आप पर इल्जाम लगाया था कि जब महाराष्ट्र में आप इलेक्शन लड़े थे कि ये बीजेपी की बी टीम है, अब वही इल्जाम शायद वो दोबारा लग जाए आपके ऊपर बिहार में जब आप फैसला कर चुके हैं आने का?
इन लोगों को तो हर दाढ़ी वाले पे इल्जाम लगाने आदत बन चुकी है सारी दुनिया में, तो ये कोई नई बात नहीं है। मगर कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगा कि तेलंगाना देने के बाद तेलंगाना में क्यों हार गए, में 42 सीटों पर कैसे शिवसेना बीजेपी का गठबंधन कामयाब हो गया। मजलिस पार्टी जो कि 24 उम्मीदवारों को कुल जो वोट हमने हासिल 5,30,000 मान लिया जाए कि पूरे मुसलमान ने वोट दिया जो गलत है, तो 55 लाख मुसलमान वोट किसको गए थे
जी?
देखिए सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख रही है क्या कमजोरी है। कांग्रेस पार्टी इस बात को कहने के लिए डर रही है कि उनका जो मेजोरिटी कम्युनिटी का वोटर है वो भाग चुका है। हर चीज में मुझे इल्जाम लगाना, फिर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में बल्दिया के इंतखाबात हुए मेरी वजह से हारे क्या?
लेकिन ये तो बात तय है कि जो महागठबंधन है नितिन जी और लालू जी के, वहां पर थोड़ी सी घबराहट तो हो रही होगी आपके आने से।
लेफ्ट पार्टीज का भी गठबंधन है, तारिक भाई भी अपना गठबंधन बनाने वाले हैं एनसीपी का, क्या कहेंगे लोगों को सब लोग?
तो ये वोट बट जाएंगे तो बीजेपी को फायदा तो होगा या एनडीए?
देखिए ये सब क्या है, फिर ये आप इन पर नहीं पूछते, सिर्फ आप असदुद्दीन ओवैसी को भी कठेरे बनाए खड़ा करते। हिंदुस्तान हेटरोजेनियस कंट्री है, बेशुमार तहजीबें हैं, बेशुमार मजाहिब हैं, बेशुमार जबानें बोली जाती, क्या इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए? हिंदुस्तान के लिए 2 पार्टी सिस्टम सही है, इलेक्शन लड़ना चाहिए, लड़ना पड़ेगा, जमहूरियत को मजबूत करना पड़ेगा।
असद साहब, कुछ हमें मुस्लिम समुदाय के बिहार के लोगों ने ये कहा है कि ये असद भाई जो आ रहे हैं वो बाहर के हैं, पैराशूट हो रहे हैं बिहार के असेंबली चुनाव में, तो लोकल मुस्लिम जो है वो उनको बाहर का समझते हैं, आप क्या समझते हैं?
मैं हिंदुस्तान का अव्वल दर्जे का बाइज़त शहरी हूँ, हम जा रहे हैं बिहार में सीमांचल के इलाके की पसमानदगी के लिए दूर करने के लिए, सीमांचल की नाइंसाफी की आवाज़ उठा रहे हैं।
और सीमांचल में जो पसमानदगी है, जो वहाँ पिछड़ापन है, वो आपका मुद्दा है, चुनावी मुद्दा, लेकिन बिहार के
जिसके लिए मैं जिम्मेदार समझता हूँ कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, आरजेडी को भी और नीतीश को भी।
लेकिन आपने अखबारों में पढ़ा होगा लो इंटेंसिटी, एक कॉम्युनल क्लैशेस छोटे मोटे हो रहे हैं जिसकी वजह से कॉम्युनल डिवाइड होता जा रहा है काफी बिहार में।
जिसकी हुकूमत है, जो हुक्मरान है, जो पार्टी बरसर इख्तदार है, वो क्या कर रही है उनको रोकने के लिए? क्यों नहीं सख्ती से लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया, क्यों नहीं उसको कुचल दिया गया?
बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने में आया है कि लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो या फिर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव हो, वो मुसलमानों की क़यादत का दावा करते आए हैं, या कुछ मुसलमानों ने भी यही सोचा कि ये हमारे लीडर हैं, क्या उस भ्रम को आप तोड़ना चाहते हैं?
मैं कौन होता हूँ किसी के भ्रम को तोड़ने वाला?
तो असदुद्दीन ओवैसी ने की है बिहार के सीमांचल इलाके से चुनाव लड़ने की घोषणा, और इसका असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा, यही जानने की कोशिश की है मनीष शांडिले ने इस रिपोर्ट में।
असदुद्दीन ओवैसी ने 16 अगस्त को बिहार के किशनगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और संकेत दिए थे कि उनकी पार्टी AIMIM बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। ओवैसी ने कल हैदराबाद में इसका औपचारिक ऐलान कर दिया। AIMIM ने बिहार के सीमांचल इलाके से चुनाव लड़ने की बात कही है, हालांकि फिलहाल पार्टी ने यह नहीं बताया है कि वह कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीमांचल इलाके में 4 जिले आते हैं जो कि मुस्लिम बहुल हैं। यहां अंतिम चरण में 5 नवंबर को मतदान होगा। माना जा रहा है कि बिहार में मुख्य मुकाबला भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए और राजद जदयू कांग्रेस के महागठबंधन के बीच है। ओवैसी की पार्टी इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना सकती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव मुंद्रिका यादव इससे इनकार करते हैं।
सांप्रदायिक शक्ति एक तरफ जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और दूसरे तरफ सेक्युलर पार्टियां जो है महागठबंधन उसका नेतृत्व लालू यादव जी कर रहे हैं और इन्हीं दो शक्तियों के बीच में लड़ाई होगी, महाभारत होने वाला है और किसी भी तरह से और कोई ओवैसी और ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान पब्लिक में नहीं है।
वहीं भाजपा ने AIMIM को एक फिरका परस्त ताकत कहा है। भाजपा मान रही है कि बिहार ओवैसी के रास्ते पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। भाजपा प्रवक्ता अजफर शमसी,
बिहार भी किसी किस्म के फिरका परस्ती को नहीं मानते हुए डेवलपमेंट और विकास, सबका साथ सबका विकास जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, तो जब सबका साथ और सबका विकास तो उसमें अकलियत का भी विकास है, यानी समाज में अगड़े पिछड़े हिंदू मुस्लिम सबका विकास है, उसी मॉडल पर बिहार का चुनाव होगा। ओवैसी साहब हो या और भी कोई लोग हो जो फिरका परस्ती फैला करके बिहार को टकराव के रास्ते पर और सांप्रदायिकता के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, बिहार अब उस रास्ते पे नहीं चलेगा।
बिहार चुनाव पर ओवैसी ने कहा है कि हम सीमांचल का पूर्ण विकास चाहते हैं, वहाँ विकास की कमी है। हमारी मांग होगी कि सीमांचल के विकास के लिए वहाँ क्षेत्रीय विकास परिषद बनाया जाना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार सूर अहमद का मानना है कि हर पार्टी पिछड़ेपन के सवाल पर ही चुनाव मैदान में कूदती है। AIMIM भी इससे अलग नहीं है।
वो इनकी सियासी पॉलिटिकल एम्बिशन कहिए जो सारी पार्टियां करती हैं वही इनका है। अगर जहां पर कुछ मुस्लिम आबादी ज़्यादा नज़र आई तो वहां पर कर दिया, नहीं आई तो नहीं किया। और जिसको हमारे बिहार की ज़बान में कुछ वोटो कटवा कहा जाए या अस्थिर की बात की जाए, और ऐसे वो इस पोजीशन में नहीं है। वो वोट कटवा करके हरा सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं बिहार में जब भी पोजीशन है एक, तो बाज़ाहिर इनकी ऐसे MIM का सिर्फ एक राजनीतिक एम्बिशन है।
पिछले कुछ समय से AIMIM हैदराबाद से बाहर पांव फैलाने की कोशिश कर रही है। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा में पार्टी को 2 सीटें मिली थी। अब पार्टी बिहार में भी हाथ आजमाएगी। ओवैसी कितने सफल रहे ये तो 8 नवंबर की मतगणना के दिन पता चलेगा। फिलहाल उनके फैसले ने बिहार चुनाव को थोड़ा और रोचक बना दिया है। मनीष शांडिल्य, BBC, पटना।
नमस्कार, भारत आप सुन रहे हैं BBC रेडियो पर निखिल रंजन के साथ, और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। दिलनवाज पाशा अखबारों पर नजर डाल चुके हैं, बताइए दिलनवाज आज के अखबारों में क्या कुछ खास है।
जी, कल झाबुआ के पेटलावद में हुए हादसे से जुड़ी खबरें और तस्वीरें लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर हैं, लेकिन अलग अलग अखबार मरने वालों की तादाद अलग अलग बता रहे हैं। जनसत्ता के मुताबिक 89 लोगों की मौत हुई है, जबकि हिंदुस्तान के मुताबिक 104 लोग मारे गए हैं। कल दिल्ली
संख्या बताई।
जी, ये काफी बड़ा फासला है, जबकि स्थानीय अखबार दैनिक भास्कर के मुताबिक मरने वालों की तादाद 88 है, तो सभी अखबारों में अलग अलग तादाद है। वहीं कल दिल्ली के विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों के नतीजे आए और एबीवीपी ये भाजपा का छात्र संगठन है, इसने सभी सीटों पर जीत हासिल की। दैनिक जागरण लिखता है, दूसरी बार 4 सीटों पर एबीवीपी का कब्जा। अमर उजाला ने इसे कहा है कि भगवा परचम एक बार फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में लहराया, और संडे ने भारत टाइम्स लिखता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप फेल। कल की एक और खबर है दिल्ली की, एक माँ बाप ने बच्चे की डेंगू से मौत के बाद आत्महत्या कर ली थी।
ये बहुत दुखद समाचार।
जी, बेहद दर्दनाक ये समाचार, लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर इससे जुड़ी खबरें हैं, और दिल्ली सरकार ने कई प्राइवेट अस्पतालों को इस मामले में नोटिस भी दिया है। डेंगू काफ़ी फैल रहा है दिल्ली में, मरीजों को काफ़ी दिक्कत आ रही है अस्पतालों में। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर का जिक्र करना चाहूँगा, जिसके मुताबिक सऊदी अरब के राजनयिक के घर से छुड़ाई गई 2 नेपाली युवतियों ने यह दावा किया है अखबार ने, पुलिस को बताया है कि उनके साथ 20 से ज़्यादा लोगों ने ज़्यादती की और कई बार 8-8 लोगों ने एक साथ उनके साथ बलात्कार किया। यह अखबार का दावा है, इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते स्वतंत्र रूप से। और वहीं द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन इस समय भारत का सबसे बड़ा चरमपंथी समूह बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले लश्कर ए तैयबा, जिसमें रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान के चरमपंथी ज़्यादा हुआ करते थे, अब उससे ज़्यादा जो कद है या तादाद चरमपंथियों की है वो हिजबुल मुजाहिदीन में ज़्यादा है, और ये ज़्यादातर चरमपंथी कश्मीर के ही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में इस्लामिक स्टेट की मदद करने के आरोपों में हिरासत में लिए गए एक महिला और पुरुष की मुलाकात 7 साल पहले फेसबुक से हुई थी, और ऑनलाइन चैटिंग के दौरान ये जिहाद की ओर बढ़े और एक दूसरे के करीब आए।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा अखबारों की इस समीक्षा के लिए, और बीती रात ये खबर आई कि फ्लाविया पेनेटा जो है वो नई यूएस चैम्पियन बन गई हैं। हालांकि नया चैम्पियन तो मिला, लेकिन अफसोस कि वो आगे और कोई खिताब नहीं जीत सकेंगी। क्यों, ये बताएंगे आपको दिलनवाज पाशा।
जी, इटली की फ्लाविया पेनेटा ने हमवतन रावटा विंची को हराकर इस साल का यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीत लिया है। फ्लाविया ने सीधे सेटों में 7-6, 6-2 से जीत हासिल की। 49 कोशिशों के बाद फ्लाविया ने जब पहली बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है तो उनकी उम्र 33 साल 6 महीने हो गई है, लेकिन उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त से खिताब जीतने के बाद टेनिस को अलविदा कहने का भी ऐलान कर दिया है।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बाकी की खेल खबरों के लिए सुनते हैं आदेश कुमार गुप्त को।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट अमरीकी ओपन में मिश्रित युगल का फाइनल भारत के लिएंडर पेस और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने अपने नाम किया। फाइनल में इस सदाबहार जोड़ी ने अमेरिका के सैम क्वेरी और बेथानी मार्टिक सैंड्स की जोड़ी को 6-4, 3-6, 10-7 से मात दी। लिएंडर पेस इससे पहले साल 2008 में भी मिश्रित युगल में अमरीकी ओपन का खिताब जीत चुके हैं। वैसे लिएंडर पेस इस साल ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन में भी मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम कर चुके हैं, यानी लिएंडर पेस के लिए मिश्रित युगल में ये साल शानदार रहा। इस साल तीनों ग्रैंड स्लैम की खिताबी जीत में उनकी साथी मार्टिना हिंगिस रही। अमरीकी ओपन में महिला युगल वर्ग में भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस भी पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी हैं। वहीं पुरुष एकल वर्ग का फाइनल शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच और दूसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर के बीच खेला जाएगा। फेडरर ने कभी साल 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008 यानी लगातार 5 बार अमरीकी ओपन का खिताब अपने नाम किया था। दूसरी तरफ नोवाक जोकोविच ने साल 2011 में अमरीकी ओपन जीता था। जोकोविच इस साल विंबलडन और फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। उधर अमेरिका में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। हालांकि कल 61 किलोग्राम भार वर्ग में फ्रीस्टाइल मुकाबलों में भारत के बजरंग कांस्य पदक के करीब पहुँच कर भी चूक गए। कांस्य पदक के प्ले ऑफ मुकाबले में उन्हें यूक्रेन के वासिल शुपतार ने मात दी। इनके अलावा 86 किलो भार वर्ग में नरेश कुमार और 97 किलो भार वर्ग में मौसम खत्री भी कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन टेनिस के कोर्ट पर भारत के यूकी भामरी शंघाई चैलेंजर के फाइनल में पहुंच गए हैं। चौथी वरीयता हासिल यूकी भामरी जब सेमीफाइनल में रूस के क्वालिफायर डेनियल मेदवेदेव के खिलाफ 6-3, 3-0 से आगे थे, तभी मेदवेदेव कमर में दर्द के कारण मैदान से हट गए। अब फाइनल में यूकी का सामना डी वू से होगा। वहीं जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल भी तय हो गए हैं, जहां पुरुष एकल वर्ग में 5वीं वरीयता हासिल चीन के लिन डेन का सामना 7वीं वरीयता हासिल डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन से होगा, तो महिला एकल वर्ग का फाइनल जापान की अकाने यामागुची और जापान की ही नोजोमी ओकुहारा के बीच होगा। उधर चीन में जारी जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में जापान के हाथों पेनल्टी शूटआउट में हार गई। अब वो तीसरे चौथे स्थान के लिए आज दक्षिण कोरिया का सामना करेगी।
और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
प्रवासियों के साथ बर्ताव को लेकर यूरोपीय देशों में बढ़ रहे तनाव के बीच हंगरी ने ऑस्ट्रिया के राजदूत को तलब किया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पेटलावद कस्बे में गैस सिलेंडर फटने से कम 85 लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। ट्यूनीशिया में हजारों लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोपियों को राहत देने वाले नए कानून के खिलाफ राजधानी ट्यूनिस में प्रदर्शन किया है। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया और पड़ोसी देशों में विस्थापितों की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अधिक पैसा दान देने की अपील की है। जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमायर का कहना है कि पूर्वी यूक्रेन में संकट के मुद्दे पर रूस, फ्रांस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के साथ वार्ता में अहम प्रगति हुई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाला दीपक जसरोटिया ने। आपसे अगली मुलाकात होगी 1 घंटे बाद विश्व भारती में। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। दिलनवाज पाशा और निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।